ओम शांति। साकार बाबा के हस्तों से घड़ी, दादियों के अंग संग रही आदरणीय प्रभा दीदी जी हम सबके बीच में हैं। हम दीदी का एक हाथ की थाली से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है। दीदी जी का जन्म 1952 में मेरठ के एक संपन्न परिवार में हुआ। आप बचपन से ही बहुत भक्ति भावना वाली थी और मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में मथुरा से आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। पहली बार जब आपका सेंटर पर आना हुआ तो बहनों के सरलता और जीवन ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। 1965 में पहली बार आपका ब्रह्मा बाबा से मिलना हुआ। ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व ने आपको इतना प्रभावित किया कि उसके 1.5-2 वर्ष के बाद ही आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित कर दिया। 1968 से आपने दिल्ली, मथुरा, नेपाल, मुंबई, सूरत आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और उसके बाद 75 से बरूच में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका 60 वर्षों का तपस्वी जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। आप में लव एंड लॉ का अद्भुत बैलेंस है। वर्तमान समय आप बरूच सेवा सब जोन की तो कोऑर्डिनेटर हैं ही, साथ साथ ज्ञान सरोवर की भी आप एडिशनल डायरेक्टर हैं। आपका जीवन हम सबके लिए एक विशेष तपस्या, त्याग और सेवा का अद्भुत बैलेंस हमें सिखाता है और आज अभी हम विशेष आपसे सुनेंगे स्वराज्य अधिकारी स्थिति कैसे बनाएं। आदरणीय प्रभा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी विशेष हमारी तपोभूमि प्यारे ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि, जो मधुबन भूमि, जो सभी आत्माओं की आकर्षण भूमि है, उस भूमि पर आप सभी विशेष बाबा के राज दुलारे बच्चे, विशेष भट्टी के लिए आप सब यहां पर पधारे हैं। आज का विशेष टॉपिक है स्वराज अधिकारी। कहने में आता है स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। प्यारे बाबा ने हम सबको ये टाइटल दिया है स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। और विश्व पर राज्य प्राप्त करने के लिए स्व के ऊपर राज्य अधिकारी बनना है। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना ही हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। विश्वराज अधिकारी बनने का लक्ष्य हमको सबसे पहले पहले प्यारे बाबा ने दिया है। हम सभी जब बाबा के बच्चे बनते हैं और बनने के बाद हम सबसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, है ना? और बाबा ने भी हम बच्चों को सबसे पहले लक्ष्य पक्का कराया है। बाबा ने हम सबको ये भी स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम भक्ति में भक्ति करते थे तो भक्ति में करते हुए भक्ति से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती थी। तो क्यों नहीं होती थी? क्योंकि भक्ति जो करते थे वो बिना लक्ष्य के करते थे। भक्ति में लक्ष्य नहीं होता है, कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य नहीं था। और बाबा ने हम बच्चों को पहले दिन से ही लक्ष्य दिया है और लक्ष्य दे करके कि तुम बच्चों को अब ये बनना है और हम बच्चे भी अपने लक्ष्य को स्मृति में रख करके पुरुषार्थ में लग गए। तो लक्ष्य के बिना पुरुषार्थ नहीं होता है, है ना? अच्छा, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं तो प्राप्ति नहीं होती है। जितनी प्राप्ति हम चाहते हैं उतनी नहीं होती है। कोई भी कार्य के लिए पहले लक्ष्य होता है और फिर उसके ऊपर विशेष अटेंशन देकर के चला जाता है, तब उस तक पहुंच सकते हैं। और अगर बिना लक्ष्य के हम चलेंगे तो वो पुरुषार्थ नहीं होता है। कहीं जाना होता है तो टारगेट नंग फाइनल होता है, मंजिल निश्चित होती है कि ये हमारी मंजिल है और हमें उस मंजिल पर पहुंचना है, तभी उस अनुसार पुरुषार्थ चलता है, है ना? भाई मंजिल पर पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचने के लिए ये पुरुषार्थ करना है और इतना समय लगेगा, वो सब निश्चित होता है, तब मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो बाबा ने भी हम बच्चों को क्या दिया? लक्ष्य दिया है? कि तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, अर्थात देवता बनना है। तो लक्ष्य दिया, मंजिल दिखाई, समय भी बताया, है ना? बाबा ने संगम का समय भी हमको बताया और संगम समय कि भाई इतने समय के अंदर हमको पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, है ना? तो जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो समय को टारगेट करके लक्ष्य पर पहुंचना है, है ना? देखो, उसके लिए बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय इशारा देते रहते हैं, है ना। मंजिल भी बताई और बार बार बाबा हम बच्चों को इशारा भी देते हैं कि बच्चे अभी मंजिल पर पहुंचने का समय बहुत कम है, इसलिए तुम बच्चों को जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ अभी कर लो। पुरुषार्थ करने का समय अब है, समय बहुत कम है और कम समय के अंदर हमको पुरुषार्थ कर अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो हम सभी उस अभ्यास में लगे हुए हैं, है ना। तो पहले अभ्यास है और अभ्यास करते करते हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यही नहीं है कि हम अभ्यास ही करते रहेंगे, लेकिन हमको अपनी मंजिल निश्चित करनी होगी कि हमको अपनी मंजिल पर क्या करना है, पहुंचना है, है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को ये मंजिल दिखाई है, तो अब हमको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। तो बाबा ने हम बच्चों को विशेष कि हमें स्वराज अधिकारी बनना है, भविष्य राज्य अधिकारी और संगम पर स्वराज्य अधिकारी। तो लक्ष्य है भविष्य राज्य अधिकारी। तो जब तक हम संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे। तो स्वराज्य, स्व के ऊपर राज्य, तो स्व के ऊपर राज्य कैसे करना है, है? स्वराज्य में है? जैसे राज्य के अंदर राजा होता है और राजा के साथ तो प्रकृति जीत स्वराज अधिकारी विश्व महाराजन हमको बनना है। तो स्व के ऊपर राज्य, तो स्वराज अधिकारी किस आधार पर बनेंगे। तो जैसे राजा होता है और राजा के अंदर साथ में उसके राज कारोबारी होते हैं और राज कारोबारी के आधार से वो अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सकता है। और अगर राज कारोबारी ठीक नहीं होते हैं तो फिर राजा का राज्य ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है। तो बाबा तो हम बच्चों को स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनाता है। तो स्व के ऊपर राज्य, स्व में आत्मा, जो मुझ आत्मा की जो भी कर्म इंद्रियां हैं शरीर के अंदर, जो भी कर्म इंद्रियां हैं उन कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारा राज्य। तो कर्म इंद्रियों के ऊपर जितना हमारा राज्य होगा उतना हम स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। अगर हमारी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य नहीं है, अगर कंट्रोल में नहीं है हमारी कर्म इंद्रियां, तो कंट्रोल में न होने के कारण हम अपने राज्य को सहज और सुचारू रूप से नहीं चला सकते, है ना। राजा जब उसके ऊपर कंट्रोल होता है तभी वो अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सकता है। इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहते कि आपकी ये जो कर्म इंद्रियां हैं, इन कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे तब हम स्वराज अधिकारी बन सकेंगे। अगर ये कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम स्वराज अधिकारी कैसे बन सकेंगे। तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय इशारा देते हैं कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, कौन सी कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म में है और स्थूल भी कर्म इंद्रियां हैं। जब सूक्ष्म कर्म इंद्रियां कंट्रोल में होंगी तो स्थूल की कर्म इंद्रियां भी कंट्रोल में होंगी। अगर सूक्ष्म में नहीं है तो स्थूल कर्म इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं हो सकती है। तो सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को हम जितना कंट्रोल में रखेंगे उतनी हमारी ये स्थूल कर्म इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी। और जब कंट्रोल में रहेंगी तो जो हम कार्य करेंगे वो हमारा कार्य क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। तो जो सूक्ष्म हमारी मन बुद्धि संस्कार है, अब इन कर्म इंद्रियों को हमें कंट्रोल में कैसे लाना है, क्योंकि इनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, तब हम अपने हर कार्य को सहज रीति से कर सकते हैं। अभी क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि हमारा मन जो है, मन के लिए क्या कह देते हैं, मन तो बड़ा चंचल है, हाँ? वो जहां तक भागता रहता है, है ना? तो मन को कैसे कंट्रोल करें, बुद्धि को कैसे कंट्रोल करें, संस्कार जो हमारे हैं, हम जो न चाहते हुए भी हम कर्म कर लेते, कोई भी कर्म है ना, नहीं चाह रहे हैं लेकिन कर्म हो जाता है, कहते हैं भाई हम अपनी आदत से मजबूर हो जाते। तो आदत से मजबूर क्यों हो जाते, तो कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना। तो कंट्रोलिंग पावर कैसे आएगी, अपने मन बुद्धि संस्कार को हम जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही हम अपने ऊपर भी राज कर सकते, स्वराज अधिकारी बन सकते। तो बाबा हम बच्चों को स्वराज अधिकारी बनाए, कंट्रोलिंग पावर हम सबके अंदर कैसे आएगी। तो कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए आप सभी अभी भट्टी में आए हैं, किस लिए आए हैं, भट्टी में किस लिए आते हैं, विशेष शक्ति भरने के लिए है? वो कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए, मन को कंट्रोल, बुद्धि को कंट्रोल, संस्कार को कंट्रोल करना। मन कंट्रोल में कैसे रहे, अभी कहते मन भागता रहता है, तो भागता रहता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय बाबा रोज मुरली में क्या सिखाता है, मुरली में बाबा क्या सिखाता है, कोई ना कोई पॉइंट रोज बाबा सुनाता है, जिस पॉइंट के ऊपर अगर हमारा मनन चिंतन चलता रहेगा, तो अगर मनन चिंतन चलता है तो मन क्या रहेगा, बिजी रहेगा, है ना। मन बिजी रहेगा तो भागेगा नहीं, अगर उसको बिजी नहीं रखेंगे तो फिर क्या होता है, वो भागता रहता है। मन के लिए तो कहावत कही जाती है ना कि मन तो चंचल घोड़ा है, है? वो क्या रहता है, भागता रहता है, तो उसको कंट्रोल करना है। भक्ति में भी कहते थे मन चंचल है, है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो कोशिश करते थे। तो बाबा ने हम बच्चों को मन को कंट्रोल करने की विधि कितनी सहज सुनाई, क्या विधि बाबा ने सहज सुनाई कि मन को कंट्रोल करने के लिए जो बाबा हम बच्चों को रोज मुरली के अंदर सुनाते हैं, उस मुरली का क्या करना चाहिए? मनन और चिंतन करना चाहिए। एक पॉइंट को लेकर के भी उसी के ऊपर अगर हम मनन चिंतन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो भागेगा ही नहीं मन। देखो, बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में करके दिखाया ना, ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ हमको करके दिखाया। देखा ना कि बाबा हमेशा जो बाबा की मुरली चलती थी उसके ऊपर मनन चिंतन भी करते थे, और फिर उसके बाद बाबा उसको देखते भी थे, रात को अपनी दरबार लगाते थे, है ना, कि भाई हमारा मन ने हमारे हमारा मन कितना कंट्रोल में रहा, बुद्धि कहीं इधर उधर तो नहीं गई। रोज उसकी बाबा चेकिंग करते थे। बाबा रोज हम बच्चों को कहते, बच्चे अपना पोता मेल देखो, कहता है ना पोता मेल देखो, तो हम सुनते तो हैं कि भाई पोता मेल देखो, लेकिन पोता मेल देखने से क्या फायदा होगा? पोता मेल देखने से फायदा होगा कि नहीं होगा? होता है ना। देखो, व्यापारी है, वो व्यापार करता है, अगर वो अपना रोज रात को पोता मेल चेक न करे है, तो उसको कैसे पता चलेगा ये घाटा हुआ या प्रॉफिट हुआ, है ना? कितना लॉस कितना प्रॉफिट, वो दोनों बैलेंस करता है और फिर देखता है और फिर उसके ऊपर पुरुषार्थ करता है, है ना। तो इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को रोज यही कहते हैं कि बच्चे तुम अपने कमाई का पोता मेल देखो, है कि आज हमारा मन बुद्धि संस्कार कहाँ तक कहाँ गया है। ए ब्रह्मा बाबा की हम हिस्ट्री में सुनते हैं कि बाबा जो थे रात्रि को अपनी दरबार लगाते थे, है के मन मंत्री तुम कहाँ गए है? तो रात को रोज बाबा अपना पूछता था है? तो अपनी रोज दरबार लगाते थे, तब वो कंट्रोल में रहेगा। तो इसी प्रकार से हम बच्चे भी अपने मन को कंट्रोल करने के लिए अपनी रोज चेकिंग करें, और जितनी हमारी चेकिंग होगी ना, उसके अनुसार हमारे अंदर जीवन में चेंज आता जाए। तो मन कंट्रोल तो बुद्धि भी कंट्रोल में रहेगी है। तो बुद्धि को भी बाबा ने रोज वर्क दे दिया है कि कोई भी बात एक पॉइंट ले करके उसके ऊपर अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी बुद्धि उस अनुसार पुरुषार्थ करती। जब मन बुद्धि हमारा ज्ञान के आधार पर पॉइंट के आधार पर उस आधार पर पुरुषार्थ करते हैं तब हमारे वो संस्कार बनते हैं। तो संस्कार अभी हमें यहाँ कौन से दैवी संस्कार बनाने, हम देवता बनने वाले हैं तो हमारे यहाँ संस्कार अभी कौन से होने चाहिए? देवताई से। तो अब हमारे देवताई संस्कार है कि हम अपनी चेकिंग करते हैं, हमारे बोल कौन से हैं, है हमारे कर्म कौन से चल रहे हैं, हमारे संस्कार किस आधार पर चल रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ किस आधार पर चल रहा है। बाबा ने हम बच्चों को जो दिनचर्या दी है, बाबा ने हम बच्चों को जो नियम दिए हैं, जो उस अनुसार हमारा चल रहा है तो अपने अगर नहीं चल रहा है तो हमारे ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो हमको अगर हमारे पुरुषार्थ में ऊंचाई नीचाई होगी तो हम कैसे श्रेष्ठ बन सकेंगे? तो श्रेष्ठ बनने के लिए हमको अपने पुरुषार्थ के ऊपर विशेष अटेंशन देना होगा और विशेष अपनी दिनचर्या के ऊपर अटेंशन देना है। बाबा ने हम सबको इतनी सुंदर दिनचर्या दी है, जिस दिनचर्या के ऊपर अगर हम विशेष पुरुषार्थ उस अनुसार करते हैं तो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल एक्यूरेट चलती है। बाबा ने हमको एक्यूरेट दिनचर्या दी है, है ना। अगर कोई कार्य टाइम पर नहीं करते हैं है? तो टाइम पर न करने से है? हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे है? तो वो कंट्रोलिंग चाहिए ना हमको, कि हम जो चाहते हैं जिस समय पर कोई भी कार्य करने का अगर टारगेट लेकर के कार्य करते हैं तो उस कार्य में हम सफल हो सकते हैं। खाली कर रहे हैं नहीं, लेकिन उसका टारगेट रखते हैं। तो टारगेट रखते हैं तो हम पहुंचे। जैसे मैंने पहले कहा ना कि मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें क्या रखना पड़ता है, टारगेट रखना। भाई हमको लक्ष्य, हमको इस समय में पहुंचना है। तो इसीलिए बाबा ने भी हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया, समय दिया हुआ है। उस समय अनुसार हम बच्चों को अभी ऐसा पुरुषार्थ करना। अगर हम बच्चों को समय की वैल्यू नहीं है तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। समय की हमें वैल्यू होनी चाहिए कि जो समय चल रहा है वो इतना वैल्यूफुल समय चल रहा है। अगर उस वैल्यूफुल समय के ऊपर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कब पुरुषार्थ करेंगे। एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट भी क्या करता है? है उसको समय होता है ना कि भाई एक साल के अंदर हमको ये क्लास चेंज करना है, और उस टारगेट को लेकर के वो उस अनुसार पढ़ाई करता है, पुरुषार्थ करता है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ये टारगेट दिया है, है? कि तुम बाबा के बच्चे है? तुमको इतना समय के अंदर पुरुषार्थ करके संपन्न बनना है, है? स्वराज्य, स्व के ऊपर हमें राज्य करना है। अपनी एक एक कर्मेंद्री हम जैसे चाहे वैसे अपने पुरुषार्थ को कर सके। अब जैसा चाहे वैसा करने के लिए हमें क्या करना है? जैसा चाहे, हम चाहते तो बहुत कुछ है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, नहीं। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे एक लक्ष्य रखो, है ना। जब एक लक्ष्य को हम रखते हैं, एक पॉइंट को पकड़ते हैं, उसके ऊपर हम पुरुषार्थ करते हैं, तो एक एक करके बढ़ते जाते हैं, है? उसके लिए ही देखो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सहज विधि दी है। कौन सी सहज विधि दी है? कि जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, है ना, रोज मुरली सुनते हैं, और मुरली सुनने के बाद बाबा रोज हम बच्चों को एक वरदान देता है और एक स्वमान देता है, है ना। वरदान मिलता है, स्वमान मिलता है, स्लोगन मिलता है, अभी तो अव्यक्त इशारा भी मिलता है, है ना। कितना खजाना मिलता है सोचो। वरदान मिलता है, स्वमान मिलता है, स्लोगन मिलता है, अव्यक्त इशारा मिलता है। अगर हम इन चारों के ऊपर विशेष अटेंशन दे करके हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना स्व के ऊपर हमारा अटेंशन होगा, संगम पर स्वराज अधिकारी बनेंगे। हमको अधिकारी बनना है, अधीन नहीं बनना है। देखो बाबा ने हम सबको कौन सा टाइटल दिया, तुम सब क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। वो तो है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा ने हम बच्चों को अपना बच्चा बनाया, और बच्चा बना करके बाबा ने क्या कहा, तुम मेरे हरेक बच्चे राजा बच्चे, है ना, राज्य अधिकारी, हरेक राजा बच्चे हो। तो हम बाबा के राजा बच्चे, राज्य प्राप्त करने वाले, राज्य करने वाले हम राजा बच्चे। हमारा क्या योग कौन सा है? राजयोग है ना। हम कौन सा योग करते? राजयोग करते हैं भाई। हमारा योग राजयोग है, जिस योग से हम राजा बनते। कहते ना, राजाओं के राजा बनते। तो बाबा ने हमें राजा बच्चा बनाया है, बाबा ने हमें राजयोग सिखाया, जिस राजयोग के आधार से हम राजा बनते। और फिर बाबा ने दूसरा भी हमको बेगमपुर का बादशाह बनाया। कोई गम है? बेगमपुर के बादशाह। तो संगम पर हम राजा बच्चे हैं, राजयोगी बच्चे हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं। तो ये नशा रहना चाहिए। हम राजा हैं, स्वराज अधिकारी हैं। जब तक संगम पर हम स्वराज अधिकारी नहीं बनेंगे तो राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकते हैं। तो इस स्वराज को सदैव स्मृति में, बाबा ने कहा नशा होना चाहिए। हम कहते तो हम राजा बनने वाले, कहते तो हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले, लेकिन वो याद रहता है? लक्ष्य याद रहता है? सारे दिन में कितनी बार याद आता है कि मैं राजा बनने वाला हूं, मैं स्वराज अधिकारी हूं, मैं बेगमपुर का बादशाह हूं, मैं बादशाह बनने वाला हूं, मेरा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण का है, मैं लक्ष्मी नारायण, आता है? सारे दिन में कितनी बार याद आता है? है? दो बार याद आता है। जब मुरली सुनते हैं तब याद आता है ना? जब मुरली सुनते हैं तब याद आता है, और मुरली पूरी हो गई तो भूल जाते हैं। तो रहना, स्मृति में रहना चाहिए ना। वो स्मृति ही हमें उस पद पर ले जाएगी। जब तक स्मृति नहीं है तब तक उस पर हम कैसे पहुंचेंगे? देखो, बाबा को स्मृति रहती थी ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा को क्या याद? लक्ष्य याद रहता था, याद रहता था ना। जब बाबा की मुरली आप सुनेंगे तो मुरली के अंदर हमेशा बाबा क्या कहता था? मैं ये बनने वाला। आपने हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री हॉल तो देखा है ना, अभी तो यहाँ पांडव भवन में हो, तो हिस्ट्री हॉल में बाबा संदली के बाजू में लक्ष्मी नारायण का फोटो लगा हुआ है ना? ट्रांसलाइट का है, उसके ऊपर कृष्ण का भी है ना? तो जब बाबा मुरली चलाते थे तो मुरली चलाते चलाते बाबा हमेशा इशारा करते थे, मैं ये बनने वाला। स्मृति थी बाबा को कि मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूं, मैं ये मिचनू किशन बनने वाला है, मेरे मुख में क्या होगा? गोल्डन स्पून माउथ होगा। नशा था ना बाबा को। हमको रहती वो स्मृति। स्मृति होगी तो स्थिति बनेगी ना, स्थिति बनेगी तो हम बनेंगे ना। अगर स्मृति नहीं होगी तो कैसे बनेंगे? बाबा को नशा था, मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा, मैं नारायण बनूंगा, मैं राज्य करूंगा। स्मृति थी ना, तब वो उस पर पहुंचा। नहीं तो बाबा का तो फिक्स प्रोग्राम था, सीट फिक्स थी। हमारी तो भले सीट फिक्स नहीं है, हम तो कहते भाई लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वन बनेंगे, सेकंड बनेंगे, थर्ड बनेंगे, फोर्थ बनेंगे, ये कोई पक्का नहीं पर बनेंगे। और बाबा भी कह देता बच्चे राजा बच्चे बनोगे, तो हम भी कहते हम राजा बच्चे बनेंगे। चलो 8 में आएंगे, 108 में आएंगे, 16,000 में आएंगे, उसमें भी आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन टारगेट तो फिक्स करना पड़ेगा ना। बाबा ने किया था ना, तो बाबा को वो स्मृति थी, और स्मृति थी तो पुरुषार्थ था। अगर स्मृति नहीं होती तो पुरुषार्थ कैसे चलता? बाकी तो देखो, बाबा की सीट तो फिक्स थी, वो कोई लेने वाला था ही नहीं है। भाई लक्ष्मी नारायण कोई दूसरा बनने वाला था? वो ही बनने वाला था ना, है ना? फिर भी बाबा ने पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? कि मुझे ये बनना है। क्यों पुरुषार्थ किया? भाई पुरुषार्थ करके बनना है, और हम बच्चों को भी सिखाने के लिए बाबा ने पुरुषार्थ किया ना। हम बच्चों को, क्योंकि बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है, सैंपल है। स्वराज था और विश्वराज, अभी भी नशा था। बाबा का बच्चा हूं, है ना? मैं एक ही बाबा का बच्चा हूं। कभी बाबा मुरली में कहता है ना, मैं सिक्की लदा बाबा का बच्चा हूं। जैसे बाबा को नशा, हम बोलते हैं बाबा के नशे जैसा कि मैं बाबा का सिक्की लद्दा बच्चा हूं। हाँ मुरली सुन लेते हम सिक्की लद्दे बच्चे है ना, लेकिन उस नशे से हम कभी भी नहीं बोलते। तो उतना हमको वो नशा संगम युग के राज अधिकार का नशा होना चाहिए ना, और जब नशा होगा तब हम बन सकेंगे ना, है ना। जब तक हमको संगम युग पर अपने स्वराज का नशा नहीं है तब तक हम विश्व महाराजन नहीं बन सकेंगे। बाबा ने हम बच्चों को विश्व महाराजन बनाने के लिए ही स्वराज अधिकारी, अब स्वराज अधिकारी बनने के लिए ताज भी दिया, तिलक भी दिया है और तख्त भी दिया है, डबल डबल दिया है, डबल ताज, डबल तिलक और डबल तख्त है। तिलक स्मृति का भी तिलक दिया, आत्मिक स्मृति का तिलक। रोज बाबा कहता बच्चे तुम कौन हो, आत्मा हो, कहता है ना बाबा आत्मा हो, हम आत्मा हैं। ये स्मृति कितना समय रहती है, और बाबा ने इस स्मृति के लिए क्या पुरुषार्थ किया, आत्मिक स्मृति को प्राप्त करने के लिए, पक्की करने के लिए बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया है, लिख लिख के पुरुषार्थ किया बाबा ने, है ना। बाबा ने क्या किया, लिख लिख के पुरुषार्थ किया, और बाबा ने ये भी आत्मा, 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 ऐसे थोड़ी भूल गया। सोचो, भूलना मुश्किल है ना, ऐसे उसके लिए अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया, तब उस स्थिति पर पहुंचा। हम भी, हमको भी आत्मिक स्मृति का तिलक, हम तो समझते हम आत्मा है ना। पहला लेसन ही हमको ये मिलता है कि तुम आत्मा हो, तो पहला लेसन हमने लिया, लेकिन हाँ समझ लिया आत्मा है, तो ये स्मृति का तिलक हमारा सदा लगा रहे। जब स्मृति का तिलक होगा तब राज तिलक मिलेगा। यहां है संगम पर स्मृति का तिलक, सत्युग में है राज्य तिलक। तो तिलक भी है, ताज भी है, डबल ताज है ना। संगम पर बाबा ने हम बच्चों को डबल ताज दिया है, एक है प्यूरिटी का ताज और दूसरा है रतन जड़ित ताज। संगम पर कौन सा है, सेवा की जिम्मेवारी का ताज। संगम पर हमको सेवा की जिम्मेवारी का ताज मिला है, पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज, और डबल तख्त है। आत्मा को डबल तख्त है, एक तो भ्रुकुटी तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो बाबा ने हमको ताज तिलक धारी स्वराज्य अधिकारी बनाया है। तो संगम पर हम बाबा के स्वराज अधिकारी बच्चे ही भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। और अभी इस समय पर जितना हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर होगी उतना हम विश्व पर भी राज्य कर सकेंगे। अगर इस समय पर हमारे कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व पर भी हम राज्य नहीं कर सकते। विश्व राज्य हमारा कितना श्रेष्ठ है, संगम पर हम विशेष पांच तत्वों पर भी राज्य करते हैं, है? तो पांच विकारों पर भी राज्य अधिकारी बनते हैं ना? पांच तत्व सत्युग में क्या होंगे, है? बाबा ने बताया ना, पांच तत्व भी सत्युग में
आपकी सेवा करेंगे। है? तो पांच तत्व की सेवा लेनी है तो पांच तत्व के अधिकारी और पांच विकारों के, है? तो उनको अभी कंट्रोल में करना है ना, पांच तत्व और पांच विकार। अभी पांच विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, परिवर्तन किए बाबा ने, है? काम माना बाबा ने का शुभ भावना, क्रोध अग्नि है, उसको योग अग्नि से हमें विजय प्राप्त करनी, मोह है, है? तो मोह को कैसे परिवर्तन करेंगे, मोह को परिवर्तन के लिए बाबा में मोह, एक मेरा बाबा, बाबा ही मेरा सर्वस्व है, तो एक बाबा में मोह, श्रेष्ठ मोह, एक मेरा बाबा, है ना। और लोभ, लोभ में क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो बाबा कहता है चाहना, श्रेष्ठ चाहना, संगम पर श्रेष्ठ चाहना, हमको ये बनना है, हमको ये करना है, ये प्राप्ति करनी है। और अहंकार है, अहंकार तो स्व अभिमान, अभिमान नहीं लेकिन स्व अभिमान, तो संगम पर हम इसको परिवर्तन करके है? अपने कंट्रोल में करेंगे तो विश्व अधिकारी बनेंगे, तो स्वराज अधिकार से विश्वराज अधिकार, प्रकृति भी हमारे वश में होगी, प्रकृति को भी चेंज करेंगे, ये पांचों तत्व भी हमारे कंट्रोल में होंगे। बाबा ने बताया था एक बारी कि ये पांचों तत्व जो हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, है? आकाश क्या करेगा, आकाश में बाबा ने कहा आपका घूमने का, हा? विमान किस में उड़ेंगे, आकाश में ही उड़ेंगे ना, तो घूमने के लिए होंगे। पृथ्वी आपको क्या करेगी, नेचुरल सतयुग में आपको अच्छे अच्छे श्रेष्ठ फल देगी, तो पृथ्वी को सतोप्रधान यही बनाना है ना। अभी हम सभी बाबा की याद में कहते हैं ना, स्वयं को भी हमको श्रेष्ठ पवित्र बनाना है तो साथ साथ प्रकृति को भी पवित्र बनाए। प्रकृति पर राज्य कब करेंगे, जब यहां हम उसको चेंज करेंगे। अभी देखो प्रकृति को भी हम योगदान देते हैं ना, देते कि नहीं देते हैं, किस लिए देते हैं, स्व के ऊपर भी देते हैं, प्रकृति को भी देते हैं, तो प्रकृति को योग, प्रकृति भी चेंज हो गई, प्रकृति भी हमारी दासी बन जाएगी, प्रकृति के भी हम अधिकारी बनेंगे। यहां तो प्रकृति हमारे विरोध में चलती है ना, सत्युग में क्या होगा, प्रकृति पर भी हमारा राज्य होगा, हमारे कंट्रोल में चलेंगी, ऐसे नहीं जब हो गई बारिश हो गई, ऐसे नहीं जब वो नहीं, वो भी हमारे कंट्रोल में होगा, इतना हम आत्माओं का वहां स्वराज होता है। तो बाबा कहते इस समय पर हम जितना इनके ऊपर कंट्रोल करते जाएंगे, स्वराज अधिकारी बनते जाएंगे, इस प्रकृति के ऊपर भी हमको राज्य अधिकारी, तब वो प्रकृति भी हमारे कंट्रोल में रहेंगी। तो जितना हम स्वराज अधिकारी बनेंगे उतना हम राज्य अधिकारी बनेंगे। राज्य अधिकार प्राप्त करना है तो संगम पर हम सबको स्वराज अधिकारी बनना, और बाबा हम बच्चों को अब स्वराज अधिकारी बनाने के लिए आए हैं, बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए आया, और बनाने की विधि रोज रोज बाबा हम बच्चों को देता है, और हम बच्चे उसी अनुसार अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा ज्ञान मार्ग तो सहज मार्ग है, पुरुषार्थ कोई मुश्किल नहीं है, है? लगता है मुश्किल नहीं है, सहज है, एकदम सहज है, है? भाई हमारा सहज योग है ना, क्या कहते हैं, सहज योग, सहज ज्ञान, है ना, ज्ञान भी सहज, योग भी सहज, जीवन भी सहज, है सब सहज है। सहज लगता है या मुश्किल लगता है? सहज क्यों है? सहज क्यों है? है अभ्यास है इसलिए सहज है। बाबा ने सहज किया है ना, बाबा ने क्या किया है? सहज किया है। सहज 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 ऐसे है ना। भक्ति में कहते योग करो योग करो, बाबा कहता याद करो याद करो याद करो। परिवर्तन कर दिया ना बाबा ने, सहज कर दिया। तुम सहज ही योग, बाबा को याद करना है, दिल से याद करो, वही हमारा योग है। और योग से ही है भाई हमारा राजयोग, राजा बनने का योग है। तो राजा बनने का योग कर रहे हैं हम सभी, हम राजयोगी हैं, राजाओं के राजा बनने का योग है ना। सिर्फ राजा नहीं, लेकिन बाबा ने कहा राजाओं के भी राजा, विश्व महाराजन बनने वाले। तो हमारा राजाओं का राजा बनने का योग है, सहज योग है। और योग क्या है? बाबा की याद है। तो जितना हम बाबा को सहज रीति से याद करेंगे उतना ही, अगर मुश्किल करेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन सहज याद करना तो सहज होता है ना। और याद किसको सहज करते हैं? है सहज कैसे होगी याद? उसके लिए बाबा ने कहा कि जो बाबा से प्राप्तियां हम सबको हो रही हैं, उन प्राप्तियों को सामने रखो। बाबा मुझे क्या प्राप्त करा रहा है? भाई हम स्वराज अधिकारी तो बनेंगे, लेकिन स्वराज अधिकारी में कौन कौन से अधिकार हैं? है? स्वराज अधिकारी आत्मा को कौन कौन से अधिकार बाबा ने दिए? सर्व अधिकारी बनाया है। स्व पर भी राज्य है, है? तो विश्व पर भी राज्य है। हम सहज रीति से हम चल रहे हैं, हमको कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। सहज है ना, कि मुश्किल लगता है क्या करे कैसे करे क्यों करे? नहीं, क्या क्यों कैसे है ही नहीं, ऐसे 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 है ना। बाबा क्या कराता है? ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे तो सहज है ना, क्या क्यों मुश्किल है ना। और ऐसे ऐसे सहज है, ऐसे बनना है ऐसे बनना है ऐसे बनना है। रोज बाबा एग्जाम्पल दे करके हमको ऐसे ऐसे बनाता है, मैं तुमको ऐसा बनाता हूं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको कोई खिलौना देख के उसको बताते ऐसा 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 करना है ना। तो हम भी बाबा के बच्चे, राजा बच्चे हैं ना, राज अधिकारी बाबा ने हम सबको बनाया। तो बाबा हम बच्चों को ऐसे 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 करना, सहज कर दिया। दुनिया वाले कहते हैं बहुत मुश्किल है, ये करना मुश्किल, लेकिन बाबा ने हमको क्या कर दिया? सहज। ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो बच्चे, रोज सुनाता ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो सहज हो गए ना। ऐसे कौन सिखाएगा? हैं? कौन सिखाएगा? बाबा, हमारा बाबा, मेरा बाबा सिखाता है कि बच्चे ये करो, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। तो वो कैसे मिलेगा? ऐसा ऐसा किस में सिखाता है? मुरली में सिखाता है, है? आज भी बाबा ने कहा ना, मुरली रोज सुनो, है ना, मुरली के ऊपर अटेंशन दो। बाबा ने कब मुरली मिस की? की बाबा ने मुरली मिस नहीं की, रोज मुरली सुनाई बाबा ने, है ना। एक दिन भी मुरली मिस की है? एक दिन की भी मुरली नहीं आई हो, ऐसा होता है? और हम बच्चे क्या कर देते हैं? हाँ, मिस कर देते ना। तो बाबा की मुरली में बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान धन देता है, शक्तियां देता है, गुण देता है, जिसके आधार से तो हम देवता बनेंगे। देवताओं में क्या होगा, है ना? आज बाबा ने कहा सर्व गुण, आज बाबा ने विशेषता सुनाई मुरली के अंदर कि सर्व गुण बनेंगे तो संपन्न बनेंगे। जब तक सर्व गुण नहीं है तो संपन्न नहीं बन सकेंगे। तो संपन्न देवता बनना है, तो संपन्न देवता बनने के लिए हमको सर्व गुण धारण करने। तो जितना सर्व गुण यहां पर हम धारण करेंगे उतने संपन्न देवता बन जाए। तो सत्युग में कौन होंगे, सत्युग में देवता कौन होंगे? सर्व गुण संपन्न होंगे। तो सर्व गुण संपन्न बनने के लिए हमें संगम पर सर्व गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। जितना सर्व गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे उतनी हमारे अंदर संपन्नता आती जाएगी, और जितनी संपन्नता आएगी उसी अनुसार हम विश्व महाराजन बनेंगे। तो अपने ऊपर अभी क्या करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। जितना स्वराज्य अधिकारी उतना विश्व राज्य अधिकारी बना। हम बाबा के राजा बच्चे हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं, ये सदा स्मृति में रख करके हमको चलते चलना है। अच्छा, ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी का, आपने जो बाबा की दादियों की शिक्षाओं से हमें भरपूर किया, हम अवश्य उसको अपने जीवन में उतारेंगे। एक बार पुनः दिल की गहराइयों से हम दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करते हैं।
आत्मदर्शन स्वयं कदर्शन, आत्मदर्शन स्वयं कदर्शन, आत्म ज्योति जगाले, बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजा बैठा सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा, भूला रही अपने पथ को, भूला दर्शन से पाले आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन आत्मज्योति जगाले बुझी हुई जगाकर ज्योति स्वराज फिर पाले आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन